آداب آداب عرض کرتی ہوں.
علاءالدین مزاج سے
آپ ہاں صاحب آپ کو ذرا سا تکلیف دوں گی میں, معاف کیجیے گا.
فرمائیے.
کچھ بتائیے اپنے گھرانے کے متعلق, آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟
میں پنجاب کے مشہور گھرانے قصور کا فرد ہوں. میرے بزرگوں نے یعنی علی بستان صاحب قبلہ اور چچا خان صاحب قاری خان قبلہ خان صاحب سے فتح علی خان صاحب سے تعلیم پائی جو پٹیالہ کے تھے, اور ان کی گائیکی کو میرے باپ اور چچا اور مجھ سے فروغ حاصل ہوا, اس لحاظ سے ہم پٹیالہ اسکول کے کہلاتے.
اچھا, آپ نے تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہی ہے, پر اور کسی سے بھی کیا آپ نے کچھ حاصل کیا؟
اپنے چچا اور والد سے سیکھا بس.
ہاں صاحب, آپ نے تو بہت ہی کم عمر سے اپنی تعلیم شروع کی ہوگی, اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق اگر کچھ بتائیں تو بڑی نوازش ہوگی.
میں نے 5 برس کی عمر سے اپنے چچا سے ابتدائی تعلیم شروع کی. ہاں, شروعات سے کے پیروں اور تار اجا کے حساب اور ابتدائی انتے اسٹائیوں پر مبنی تھی.
اچھا,
مثال کے طور پر یہ عرض کیے دیتا ہوں.
کچھ سنائیں گے ابھی؟
ہاں.
گھرانے کی گائیکی اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالے تو بڑی مہربانی ہوگی.
اچھا, ہمارے گھرانے کی گائیکی میرے کان میں گانے سے ظاہر ہے. جو بھی اچھائی برائی ہے ہمارے گھرانے کی گائیکی میں جن چیزوں کو اہمیت دی گئی وہ یہ ہے. سب سے پہلے مدرے کی شدھتا, آواز کی کھول مون, سر کا سچا لگنا, استائی انترے کا بھرنا, فرت کو لئے میں کرنا, راگ کی سچائی کا بھرم رکھنا, بل کی خوبصورتی سے کٹنا, اور ہمیشہ کا نت نیا اور ولمپت کو راگ کی وسط کے مطابق کرنا.
اچھا,
اور وہ یعنی کہنا جس سے راگ کے تدبر میں فرق نہ آئے اور راگ اپنے معیار سے گر کر ٹھمری کا انگنا بن جائے.
مطلب
देख जिस तरह थुंगनी की आवाज में गाई जाती है और जिस तरह स्थायी यंत्र में गाई जाती है वो उनको अलहदा अलहदा करना वो अर्थ कर देते
हैं। बताइए सर।
दब मोरे नैया पार करोगे, अब पूरी आई, अब मोरे नैया अब मोरे नैया अब मोरे नैया अब मोरे नैया पार करोगे नहीं। ये जमजमा लेना बगैर वजह के, क्योंकि वहां तो रह गई नहीं, हमने जमजमा पहले वहां पहुंचा दिया।
ये राग
का धर्म यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है
जी,
है नहीं? और मैंने जहां तक देखा है कि राग को जैसे बयान किया जाता है उसका तदब्बुर का मायना क्या है, वो ये मायना है कि उसमें कुछ ऐसा जटियलपन न पैदा हो जाए, वो बड़े से बड़ा रहे जहां तक उसकी खसूसियात है। और ठुमरी को हम इस तरह गाते हैं कि जैसे एक आम चीज गाते हैं, अब कहने अब मोरी नैया अब मोरी नैया। ये तो किसी जमजमा हम उस वक्त देते हैं कि जिस वक्त हम बहुत तैयारी पे हों और उसके दांव पे जो आखिर के हैं उसमें हों, इससे अगर हम पहले गाएं तो इसमें ठुमरी का अंग राग में गाना जायज भी नहीं समझते,
हल्का बना जाता है
राग हल्का।
अच्छा खान साहब, आपकी आवाज में जो कशिश है मैं दूसरों की आवाज में नहीं पाती हूँ, क्या आपने अपनी आवाज रियाज से बनाई है या ये खुदा की देन है?
आवाज सचमुच कुदरती की देन है, जिस आवाज में हम सब लोग बातें करते हैं ये कुदरती की दी हुई आवाज है। कुछ आवाजें कुदरती तौर पर दिलकश जरूर होती हैं, लेकिन गाने वाली आवाजों को बहुत ही महसूस ढंग से बनाया जाता है। ज्यादा ऊपर जाने वाली आवाजें अमूमन बारीक होती हैं और चौड़ी आवाजें ज्यादा ऊपर जा नहीं सकती, और ऐसी आवाजों को ऊपर जाने के अंग मशकें की जाती है, अलग मशकें की जाती है। मेरी आवाज कुदरती सुरीली भी है और इसको चौड़ा चिकना करने के लिए और पुरकशिश करने के लिए बुजुर्गों की बतलाई हुई मेहनतें भी की जाती हैं।
खान साहब थोड़ा सा गाइए, क्योंकि आपकी आवाज किस तरह वो ऊपर जाती है जरा से बताइएगा आके, कि किस तरह आपने इतनी मुलायमियत के साथ किस तरह आपने जाते हैं जरा सा।
वो बात यह है के रियाज के जो तरीके हैं वो मैं अभी इसी वक्त तो सभी बता नहीं सकता।
नहीं नहीं, रियाज नहीं, सिर्फ ऐसे खाली जरा से गाइए ताकि
नमूने
के तौर पे
अच्छी बात थोड़ा अंदाजा हो जाए।
अब मोरे नैया पार मेहनत भी इस तरह की जाती है, ये खास तरीके बताए जाते हैं जो कि आम लोग नहीं समझ सकते इसको।
वो कभी फिर आपसे सुनूंगी बात
इंशाल्लाह।
अच्छा खान सर ये बताइए कि आप ख्याल के तो उस्ताद तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर आपकी ठुमरी जो है ना वो भी अपने ढंग की एक निराली चीज है। आप ठुमरी के मुतालिक अगर कुछ बताए तो बड़ा अच्छा हो। सुनने में आता है कि आजकल खास करके कि ठुमरी के दो अंग है यानी पूरब व पंजाब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
ये बड़ा ही अच्छा सवाल है जो आपने मुझसे पूछा। ठुमरी का अंग तो एक ही है कि पूरब अंग क्या है, और ये हसीन ईजाद पूरब ही की है।
अच्छा, तो पंजाब अंग नहीं है आपका?
मैं आज करता हूँ, इस चीज को ईजाद होकर गालबन 1.5 सदी के लगभग का सा हुआ। 50-60 बरस हुए कि इस चीज को पंजाब वालों ने अपनाया।
अच्छा,
इसको अपनाने वाले मेरे ही बाप चचा हैं और इनसे पहले पंजाब में कोई नहीं गाता था। वो लोग इसे पूर्व के अंदाज से ही गाते थे क्योंकि ठुमरी के बोल पंजाबी में आज तक सुनने में नहीं आए।
नहीं आते।
हमारे यहाँ पंजाब में लोक संगीत का ज्यादा रिवाज था और है, और वो भी अपनी नौयत का अलग अंग है, अपनी जगह पंजाब की खूबियों की तर्जमानी करता है। वह पंजाब में
जो जैसे माहिया वगैरह,
हाँ, बुजुर्ग शायर गुजरे हैं उनका कलाम पंजाब के लोक धुनों में गाया जाता है। इस तरह सिंध में भी वो भी बहुत ही प्यारा अंदाज है, यानी सिंध का पंजाब और मुल्तान के इलाके का अंदाज गाने का और फ्रंटियर वगैरह पंजाब वालों ने इन सब अंगों को मिला के खुशनुमा गुलदस्ता बनाया जो अपनी जगह खूबसूरत मालूम होता है।
जैसे मुल्तान भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, सब कुछ है।
जी हाँ, अब रहा पूरब, तो वो जगह, वो अपनी जगह उसी पूरब की तहजीब और तकल्लुफात का इजहार करता है। ठुमरी बहुत ही मुश्किल है, इसके गाने वाला कभी कभी पैदा होता है, हर गाने वाला इसे अदा नहीं कर सकता।
सही,
अमूमन जज्बाती ही लोग पेश कर सकते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में दोनों अंग पेश करता हूँ, और हाँ, पंजाब और पूरब इन दोनों इलाकों में अच्छा बुरा गाने वाले हैं।
नहीं।
सब अच्छे नहीं, बुरे भी नहीं, अच्छों ने संभाला, बुरों ने बिगाड़ा है। ये थोड़ा थोड़ा दोनों को पेश करता हूँ।
हाँ।
अगर दोनों अंगों को, हाँ सर, सुनाइए, बहुत तकलीफ दे रही हूँ, माफ कीजिएगा।
अच्छा, पूरब अंग में गाता हूँ
जी। के साथ ये पूरब अंग की वही लोग गा सकते हैं जिनके अच्छे ख्याल और अच्छे जज्बात हों। और अब रहा ये पंजाब, अब पंजाब और सिंध का अंग मिल करके अच्छे लोगों ने तो अच्छी सुरों से गाया, जो बेखबर लोग थे उन्होंने कुछ और भी तरह गाया। वो भी सुनाइए।
बिगाड़ते हैं
ये पंजाब अंग है
ना, ये
सिंध
है।
सिंध,
अब वो बिगाड़ते हैं इसको मिला करके।
अच्छा,
ना उसको आवाज लगाना आता है ना कुछ, वो सिर्फ इस सुर की धुन में वो पंजाब और सिंध का अंग मिला करके, वो ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के सिखाए नहीं तो वो लोगों का अंग है, जैसे उर्दू वालों का अंग हिंदुस्तान नजर दिया। अब वो सीखा वो अंग तो है नहीं, ना उसमें वो कशिश सुर का मजा, ना लहेगा मजा, एक बात है वो कह दी।
अच्छा ये पंजाब अंग फिर कौन सा?
पंजाब अंग जो
ये तो सिंध का अंग
है। जी पंजाब करना रो हानिया ये है राग भैरवी। ये राग भैरवी उसको शुद्ध करके गाना, पहले हम बुजुर्गों से हम सुनते ये था। ये चाहे पंजाबी गाना भी गाते तो इसको इसका धर्म ठीक लगते। अब जैसा कि हमारे हिंदुस्तान वालों ने है नी दिख कड़ी भी लगा दी, कड़ी मध्यम भी लगा दी और फिर उसका मजा लेने लगे। आप समझी? तो ये लगा दिया, अब ये शुद्ध भैरवी तो रही नहीं है नी, ये शुद्ध भैरवी तो रही नहीं
जी।
क्योंकि शुद्ध में ये सब चीज नहीं, नीता गामा धाबा गामा जा नीता गाने धाबा ने धाबा गामा रे सा, ये है शुद्ध भैरवी। अब रस के बने तोरे नाना, कड़ी मध्यम भी लगा दी, उसकी शुद्धता जाती रही, वो एक मिक्सचर बना दिया गया। जैसे ये उस तरफ वहाँ सिंध और पंजाब वो एक मिल गए।
अच्छा अब ठुमरी जिसे पंजाब अंग कहते हैं, लोग जिसे कहते हैं, आप तो कहते हैं ना कि उसको मिला के फिर वो खूबसूरत तरीके से कहता है, जरा वो भी
वो खूबसूरत तरीका मैं जिस तरह गाता हूँ ना तो हिंदुस्तान अंग ना पंजाब अंग,
जो खूबसूरत अंग
वो ये है कि सुरों को अच्छे तरीके से लगाना। इनमें अंग ये नहीं कि मैं जैसे वो करते हिंदुस्तानी वो करने लगूं, जैसे पंजाबी करते हैं वो करने लग जाऊं, तो मैं तो गवैया हूं, जो मेरी पसंद
सुलझा
हुआ अंग वो मैं के देता हूं। रस के चल बना है, मैं इसको एक राग की शक्ल नहीं देता, एक गुलदस्ते की शक्ल देता हूँ। मैंने वो जो जोर से लंबे आवाज देने और कम करने
वो
नहीं किए,
वो तो जो पूरा अंग जो बिगाड़ते हैं वैसे, मतलब सुलझा हुआ मतलब ये
है।
तो आपके ख्याल में भी ये है कि ऐसे कि पूरा अंग और पंजाब अंग कुछ नहीं है, ठुमरी के एक ही अंग है
जो सुलझाओ
जो सुलझा
सुलझा हुआ जिसमें के जज्बात इजहार हो किया जाए वही,
और सुरों को इस तरह ना बरता जाए जिससे वो कुछ अपने म्यार से गिरे हो, वो नहीं होना। यूँ ना हो।
और पहाड़ी जैसे पंजाब अंग में आमतौर पे लोग कहते हैं पंजाब अंग की ठुमरी सुनो, वो पहाड़ी में वो गाते हैं, वो
ठुमरी नहीं दरअसल वो
लोकगीत
वो तो हमारे उस्ताद खान साहब फतेह अली खान साहब جب وہ جمبو میں ملازم تھے تو ہمارے والد صاحب بھی اور میرے استاد خان صاحب قاضی خان صاحب بھی چچا میرے وہ ان کی خدمت میں تھے اور وہاں ملازم بھی تھے
جی.
تو جیسے لڑکیوں بولنا راؤ ان کو کہنے کا ڈھنگ وہ تو وہ کیا جانے جو لوگ نہیں وہ قدرت نے جو سر کا حصہ تو کسی میں دیا ہی ہوا ہے قدرت نے حصہ دیا ہوا ہے ضرور اب وہ چاہے سیکھا ہوا ہو چاہے نہ جو نہ سیکھا ہوا وہ تجھے کہہ رہا لڑکیاں وہ لڑائے راؤں گاڑے کن کی اب آیا ہمارے استاد کے کان میں بھی آواز تو وہ بولی اچھی معلوم ہوئی انہوں نے کہا